તારીખ 10/11/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 400 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 342
પ્રશ્ન 400 પાનું 225 અચ્છા આ કોઈ किसी ने प्रश्न पूछा है बेंत्री को कि कोई अपूर्व दिव्य मंत्र बता दो. प्रश्न हिंदी में ही पूछा है क्या योगानुयोग है. क्या प्रश्न पूछा है कि कोई अपूर्व दिव्य मंत्र बता दो. मंत्र क्या चीज होती है. मंत्र मैंने कोई गुप्त रहस्य वाली कोई चीज ऐसी होती है जिससे कोई बढ़िया काम हो जाए उसको कहते हैं मंत्र. मंत्र किसको कहते हैं कि कोई गुप्त बात रहती है जिससे कोई बढ़िया काम हो जाए उसको कहते हैं मंत्र. किसी ने पूछ लिया है कि हमको कोई अपूर्व मैंने कभी भूतकाल में नहीं मिला हो ऐसा मंत्र बता दो हमको. समाधान देते हैं. बहुत संक्षिप्त में समाधान दिया है. गुरुदेव ने मंत्र बताया है हम क्या बताएंगे. क्या बोले गुरुदेव ने तो मंत्र बताया ही है. संसार में भटकने वाला पामर प्राणी कभी जानवर होता है कभी मनुष्य होता है. दुखी बहुत होता है. ऐसा संसार में भटकने वाला पामर प्राणी तीन लोक का नाथ हो जाए. वितराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर ले. सिद्धालय में बैठ जाए. ऐसा बड़ा काम हो जाए. ये कोई छोटा मोटा चमत्कार थोड़ी ना है. बहुत बड़ा चमत्कार है. हमारे यहाँ वो जादूगर लोग आते हैं ना तो कोई छोटा छोटा सा बॉल में से पक्षी बना देता है निकालता है ना डिब्बे में से और फिर पक्षी में से कोई पिल्लू बना देता है डिब्बे में से काटता है पिल्लू में से कोई लड़की को निकालता है तो आश्चर्य लगता है देखो क्या क्या बना दिया. ये तो सब हैंड ट्रिक है. वहां कोई मंत्र भी नहीं है जादू भी नहीं है चमत्कार भी नहीं है. लेकिन ये तो वाकई चमत्कार है कि संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी जानवर बनने वाला प्राणी बन जाता है तीन लोक का नाथ. ये मंत्र कैसा. ये मंत्र इतना बढ़िया है कि इससे बड़ा कोई मंत्र विश्व में है ही नहीं जगत में. ऐसा मंत्र श्री गुरु ने बताया है ऐसा कहते हैं. पूछा है बेंसरी को लेकिन वो खुद नहीं बताते. हम क्या बताएंगे. गुरुदेव ने बताया है. गुरुदेव ने मंत्र बताया है. गुरुदेव को पहचानो. क्या बोला. गुरुदेव को सुनो ऐसा नहीं बोला. गुरुदेव का उपदेश सुनो ऐसा नहीं बोला. उपदेश में जो मंत्र आया है वो मंत्र बताओ ऐसा मंत्र ये मंत्र बताया ऐसा नहीं बोला. गुरुदेव को पहचानो. तो बहन से तो गुरुदेव की भक्ति करते थे। तो क्या है तो नायक में और गुरुदेव में अंतर तो नहीं है, अंतर अंतर तो होता नहीं ना। आत्मा गुरुदेव और परमात्मा तीनों में अंतर नहीं होता। जिसको अंतर भाषित होता है, मालूम पड़ता है, उसको पहचान नहीं, न उसको आत्मा की पहचान है, न उनको गुरु की पहचान है, न उनको भगवान की भी पहचान है, परमात्मा की भी पहचान है। तो गुरुदेव ने वो मंत्र बताया कि अपने स्वरूप को पहचानो, नायक देव को पहचानो, मैंने अपने आत्मा को पहचानो। हम यही मान के चलते हैं, फिरते हैं कि हम तो फलाने फलाने मनुष्य हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो एक देह का संयोग से अवस्था हुई है मनुष्य की। वो अवस्था टेम्पररी है, वो देह का वियोग होने वाला है, छूट जाएगा। संयोग है, वो वियोग की गोद में पहले से ही रहता है। संयोग होते ही साथ ही वियोग की गोद में ही रहता है। वो तो मनुष्य है, वो मूल स्वरूप नहीं है हमारा। ये एक पूर्व कर्म प्रारब्ध के अनुसार अमुक काल के लिए होने वाली एक अवस्था है। आत्मा मूल चीज है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए कहते हैं ज्ञायक देव। उसको पहचानो, पहचानो उसको, पहचानो मैंने पहचानो कि वास्तव में हमारा मूल स्वरूप क्या है। जब तक मूल स्वरूप की पहचान नहीं होती, तब तक कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं होता। ये एक सिद्धांत है, सूत्र जैसा सिद्धांत है कि जब तक अपना मूल स्वरूप की पहचान नहीं होती, तब तक हमारा कर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता। हमें क्या करने योग्य है, क्या हमें नहीं करने योग्य है, वो कर्तव्य और कर्तव्य का कोई निश्चय यथार्थ रूप से नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं हम कि मनुष्य हैं, तो मनुष्य समाज के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। हम हमारे कुटुंब में निवास करते हैं, तो कुटुंबियों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। हमारे पिताजी के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पुत्र परिवार के लिए क्या कर्तव्य है, पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है, और दूसरे संबंधी होते हैं इनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है। ये सब बातें खड़ी हो जाती हैं। हम आत्मा है और हमारे आत्म कल्याण के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, वो बात रह जाती है। परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप ये बात होता है कि मनुष्य अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म बांधता है और इसको भोगने के लिए दूसरी गति में उसको जाना पड़ता है। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की व्यवस्था है। ये व्यवस्था सहज कुदरती होने से किसकी बनी बनाई नहीं है, इसमें कोई ईश्वर विश्वर का कोई कर्तापना नहीं है। इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र सबके लिए कानून एक ही है। नायक देव माने अपने आत्मा को पहचानो, नायक देव सुख से भरा हुआ है, भरेला मैंने भरा हुआ है, भरेला गुजराती शब्दावली है, नायक देव सुख से भरा हुआ है इसको पहचानो। क्यों ये बात लिया कि प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को प्रयोजन सुख का है। प्रयोजन माने मतलब, सबको सुख का मतलब है, कुछ करने से और कुछ नहीं करने से सुखी चाहिए, करने से भी सुख चाहिए, नहीं करने से भी सुखी चाहिए, सुख का ही मतलब है सबको। और सुख स्वरूप में आत्मा में भरा हुआ है वो बात मालूम नहीं है। आत्मा खुद ही चमत्कारिक पदार्थ है। कुछ चमत्कार तो प्रसिद्ध है फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि हमारी आंख में चने की दाल जितना लेंस है जिसके थ्रू हम जानते हैं, जानते हैं तो ज्ञान से, लेकिन लेंस का थ्रू ये जानने का होता है कितना है चने की दाल जितना। वो निकालते हैं ना मोतिया निकालते हैं ना कैटरिक, उसके पर लगा हुआ है उतना ही साइज में लग जाता है, तो उतना ही इसका टेबल है देखने का, कितना देखता है हिमालय को देखता है, हिमालय को देखता नहीं हिमालय को नापता है। और इससे आगे जो हो तो हजारों अरबों, हजारों ने अरबों मील जो सूर्य चंद्र तारा है उसको भी देखता है, जगह कितनी है उतनी सी जगह है, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर बैठे बैठे अपने आप में बैठे बैठे देख लेता है सबको वहां गए बिना। ये ज्ञान का चमत्कार है। जमीन में जो पेट्रोलियम निकलता है 2000-3000 मीटर कितना भरा है उसका नाम निकलता है, लाखों क्यूबिक मीटर पेट्रोलियम भरा है वहां गए बिना मान नाप लेता है, पानी को देखता है यहाँ बोरिंग करो पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, बिना खुदाई किए कैसे मालूम पड़ता है, ज्ञान मालूम करता है कि नहीं करता है। बहुत से चमत्कार है ज्ञान के, इससे बड़ा चमत्कार कोई है, ज्ञान से भी चढ़ाता बड़ा चमत्कार है ये सुख का है। मतलब तो सुख से है ज्ञान से नहीं, कि आत्मा में बेहद सुख भरा है ऐसा एक चमत्कारिक पदार्थ आत्मा है। मालूम नहीं होने से, इसका अज्ञान होने से और जगह से सुख लेने का प्रयास संसार में सभी प्राणी का होता रहता है, और वहां आत्मा का सुख है ही नहीं। वहां सुख नहीं होने से सुख मिलता नहीं, सुख मिलता नहीं तो तृप्ति होती नहीं, और अतृप्त अवस्था में सभी प्राणी भटकते रहते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर, इस तरह से संसार में सभी प्राणी दुखी ही दुखी है। इसलिए कहते हैं कि नायक देव माने अपनी आत्मा सुख से भरा हुआ है इसको पहचानो, अपने सुख को पहचानो। पहचानो इसलिए कहा कि सुख का स्वरूप क्या है वो मालूम नहीं है, सुख का क्या स्वरूप है वो मालूम नहीं है। संसार के बुद्धिमान से बुद्धिमान अति बुद्धिमान मनुष्य को आप एक सवाल पूछिए कि ये हमारा वर्तमान जमाना है वो मटेरियलिज्म का है, सुख को मटेरियलाइज कैसे करते हो, हाउ टू मटेरियलाइज हैप्पीनेस, सुख को कैसे मटेरियलाइज करते हो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा पलंग हो, पलंग बिस्तर सोने का, बढ़िया से बढ़िया, कितना बढ़िया से बढ़िया, इस पे हम बढ़िया से बढ़िया चादर बिछा दें तो इसके कारण से नींद का सुख मिल सकता है क्या? और एक मजदूर है, बिस्तर जिसके पास नहीं है, जमीन पे लेट जाता है ऐसे हाथ रख करके, इसके पास तो पिलो भी नहीं है और साथ निंदर लिंग देता है, और अच्छे 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 बिस्तर में सोने वाले को नींद नहीं आती है, इधर उधर हुआ करता है, टेंशन है, क्या करें। हमारी इंडस्ट्री में 10,000 आदमी काम करते हैं तो इसकी तनख्वाह भी देनी पड़ती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, सबका बोझ हमारे दिमाग पर आता है, नींद आएगी कैसे? इससे बड़ा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, सब पावर इसके हाथ में है, और 70 करोड़ की आबादी का टेंशन भी इसके दिमाग में ही आता है, पावर भी इसके हाथ में आता है और टेंशन भी इसके दिमाग में ही आता है, तक नींद नहीं आती। इंदिरा जी को गोली खानी पड़ती थी नींद की, वाजपेयी की जानता नहीं है लेकिन इंदिरा जी को तो खानी पड़ती थी। कितना सुखी है, हिंदुस्तान का बादशाह हो गया, प्राइम मिनिस्टर मैंने बादशाह हो गया, सब पावर इसके हाथ में, कितना सुख मिला पूछो इनको। आखिर में जाके गोलियां खानी पड़ी, धड़ाधड़ 32 गोली खाई, ऐसे मरी, कितना सुख था, कोई सुख वहां मिलता नहीं। बुद्धिमान है ये लोग, सारे हिंदुस्तान का शासन चलाते हैं तो बुद्धिमान तो है ही, लेकिन सुख के विषय में कितनी बुद्धि चलाई। हमारे त्यागी गुरुओं ने, कैसे त्यागी थे हमारे गुरु, तो महल में वैभव में नहीं रहते थे, आलिशान बंगला में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे, और जिनेंद्र सुख के विषय में उन लोगों ने बुद्धि चलाई। देखो जहां से तुम सुख लेना चाहते हो वहां सुख की गंध भी नहीं है, सुख की परछाई भी नहीं है वहां, तो इसलिए किसी को सुख मिलता नहीं। ये तो बड़े से बड़े दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए, देखो इन लोगों को सुख मिलता है तो दूसरों को किसी को सुख मिलता होगा, बताओ। कैसे कि आत्मा खुद सुख से भरा हुआ है, इसको पहचानो, अपने सुख को पहचानो, सुख के स्वरूप को पहचानो कि सुख का स्वरूप क्या है। फिर सुख के विषय में धोखा नहीं खाओगे, पहचान होने से धोखा नहीं खाओगे। वरना धोखा खाता है। खाने में सुख है लेकिन खाते खाते थक जाता है, सुनने में सुख है तो सुनते सुनते थक जाता है, बजाने में सुख है तो बजाते बजाते थक जाता है, सोने में सुख है तो सोते सोते थक जाता है। अभी तो चलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, सोने में चलते चलते थक जाता है, कहाँ सुख है। पश्चात दुख वो सुख नहीं जिसके पीछे दुख खड़ा हो गए, उनको सुख कैसे माना जाए। ये बात हमारे परमेश्वर ने, वितराग पर ने परमेश्वर ने कही है। ये ज्ञानी लोग तो जो वितराग परमेश्वर ने बात कही उसका रिपीटेशन करते हैं अपने अनुभव से। ज्ञानी तो उसको इसलिए कहा गया कि वो ऐसे अनुभव किया, इसलिए अनुभव ज्ञान होने से उसको ज्ञानी कहा। लेकिन वो बात तो कहते हैं जो जिनेंद्र परमात्मा ने कही है, वो बात वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि माल तो इसका है, हम तो माल बेचने वाले एजेंट हैं, हम तो परमात्मा के माल बेचने वाले एजेंट हैं, कमीशन लेते हैं, कमीशन एजेंट काम करते हैं ना, कमीशन से कमीशन लेते हैं। क्या कमीशन लेते हैं कि हम भी थोड़े बहुत सुखी होते हैं, हम भी वो पूर्ण सुखी है, वो परमात्मा तो पूर्ण सुखी है, हम थोड़े सुखी है, उस तरह से वो बात तो उनकी कहते हैं कि अपने आत्मा में सुख भरा हुआ है इसको पहचानो। नायक द्रव्य मैंने, आत्म द्रव्य मैंने, आत्म पदार्थ, आत्म वस्तु, उसकी प्रतीति, प्रतीति मैंने खात्री, उसका विश्वास कि सुख मेरे में ही है, मेरा सुख कहीं बाहर में नहीं है, ऐसा विश्वास, इसका ज्ञान, इसका अनुभव करो, अपना सुख का अपने आत्मा में अनुभव करो, विश्वास करो, अनुभव करो और उसमें लीनता करो, मैंने एकाग्र हो जाओ, उसमें ही लीन रहो, उसमें ही जमे रहो, तो बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए माने कि तुम ही परमात्मा बन जाओगे। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि भक्त को भक्त के स्थान में रखें, भक्त को भगवान बना दे। जो कोई भक्त आता है भगवान के पास, भगवान उसको क्या बोलता है मालूम है? कि तुम ही मेरे जैसे भगवान बनने लायक हो, तुम्हारा मूल तत्व, ओरिजिनल एलिमेंट, वो तो भगवान स्वरूप ही है, आत्मा सु परमात्मा। लेकिन अवस्था में गड़बड़ी है, तुम्हारे कुछ मिथ्या अभिप्राय है, मिसकॉन्सेप्ट है, उनको बदल दो, सही अभिप्राय करो, सही सुख के रास्ते पे लग जाओ, तुम भी हमारे जैसे पूर्ण परमात्मा बन जाओगे। अभी तक ऐसे अनंत संसारी जीव परमात्मा बन बन करके सिद्धाली में विराजमान हो गए हैं, वे सब हमारे जैसे ही थे। भगवान महावीर स्वामी को जब बोध मिला तब वो सिंह के भाव में थे, सिंह थे, और सिंह तो घास खाता नहीं, सिंह तो मांस खाता है, घास नहीं खाता। ऐसी हालत में उनको बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान हुआ था। फिर दस भाव निकल गए क्योंकि गड़बड़ी बहुत किया था, भूतकाल अच्छा नहीं था, और किसी का भूतकाल अच्छा होता ही नहीं है, संसार में एक जीव भी ऐसा नहीं है कि जिसका भूतकाल अच्छा हो। क्यों? कि सब निगोद में जाते हैं, बहुत अपराध करते हैं, बहुत बुरा परिणाम करते हैं, उतने हल्के परिणाम करते हैं, नरक निगोद में चले जाते हैं। ये मनुष्य भोग तो अब 150 साल का है, अनिश्चित, बाकी तो त्रिंश में चले जाते हैं। और निगोद त्रिंश गति का ही एक हल्की से हल्की गति है, और अधिक कालानंद काल तो उसमें ही रहना होता है। परिभ्रमण करने वाले को त्रस पर्याय, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री तो बहुत कम है, एक इंद्री निगोद में ही अनंत काल बीतता है। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें जाने का, जाने लायक परिणाम किए तब तो गया ने, भाव बिगड़े तब तो गति बिगड़ी ने, तो सबकी परिस्थिति तो वही हुई, हो चुकी है। और जो हो चुकी वो तो हो चुकी, जब से जागृत हुए तब से सुबह हुई, समझो, जग गया त्यांथी सवार। अब संभालो अपने आप को। तो हमारे जैसे अनंत संसारी प्राणी अभी सिद्ध परमात्मा बन करके सिद्धालय में विराजमान है, हम ही बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। पर हम क्यों नहीं बन सकते? जब हमारे जैसे वो लोग भी बने तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी हमारे जैसे ही थे, जाति तो एक ही होती है, सभी जीव की जाति तो एक ही होती है, जाति से कोई अलग अलग जाति के नहीं है। ये तो मनुष्य में ये जैन है, ये फलाने हैं, वो जैन है, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है, वो ऐसे है, वो वैसे है। भगवान की नजर में कोई ऐसी बात है ही नहीं। बनारसी दास जी ने लिखा है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। सबके भीतर में जिन मैंने परमात्मा विराजमान है, घट घट अंतर जैन, और सब जैन ही है, कोई दूसरे जाति के है ही नहीं। मत मदिरा के पान से, हमारा फलाना मत है, हमारा हिंदू मत है, हमारा बौद्ध मत है, हमारा क्रिश्चियन मत है, हमारा जैन मत है, वो मत रूपी मदिरा पिया हुआ है, मत मदिरा के पान से मतवाला हुआ है, मतवाला समझे ना, वो मतवाला नहीं समझेगा। भगवान की नजर में तो सब सभी आत्मा ही है, सब परमात्मा ही है। और इसका बहुत बड़ा सबूत है कि भगवान के समोह शरण में जहाँ उपदेश चलता है, वहाँ देवलोक भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और पशु पक्षी भी आते हैं, जलचर प्राणी आते हैं, वहाँ व्यवस्था है पानी की, मछलियां आती हैं, मगरमच्छ आते हैं, काच भी आते हैं, जलचर प्राणी आते हैं, खेचर प्राणी पक्षी लोग आते हैं, भूचर प्राणी सर्प सिंह सिंह बाघ गाय भैंस सब आते हैं। जाति का भेद होता तो भगवान इसको उपदेश नहीं देते, लेकिन कोई जाति का भेद वहां है ही नहीं, जाति वेशनों भेद नहीं, जे समझेते थाए। अपने स्वाध्याय में आते हैं, महमूद भाई आते कि नहीं आते? और एक सलीम भाई आने की इच्छा करते हैं, स्कूटर का वो रिपेयरिंग करते हैं, गैरेज है, दलाली भी करता है, स्कूटर लेते हैं अपने लोग ने लिए, कुछ सेकंड हैंड स्कूटर बेचता है, नया भी बेचता है, नाम है सलीम है, बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी है। स्कूटर लेने को जाते के ले जाओ, पैसे नहीं लाए कोई बात नहीं, पैसा आप दे जाना कभी भी, 15 दिन महीने के बाद दे जाना, ऐसा करता है, संपन्न है, बोलता है 15 दिन महीने के बाद दे जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग आते हैं हमको अच्छा लगता है, हमको भी आना है आप लोगों के स्वाध्याय में, ऐसा बोलता है, इच्छा करता है, आता नहीं है अभी, बोलते हैं हम मुसलमान हैं आ सकते हैं, हमारी नज़र में तो कोई मुसलमान है ही नहीं, सबको दो आँख है, दो कान है, नाक है, सब मनुष्य है, जाति से तो मनुष्य जाति में तो, और हमारे लिए तो मनुष्य जाति भी गौण है, मुसलमानपना तो गौण है, मनुष्य जाति भी गौण है, सब आत्मा ही आत्मा है यहाँ तो। समय सार की प्रथम मांगलिक की गाथा में अमृतचंद्र आचार्य ने उपदेश शुरू किया तो ये लिखा है कि मेरा आत्मा तो सिद्ध समान है ही, मैं मेरा श्रद्धा ज्ञान में मेरे स्वरूप को सिद्ध रूप स्थापित करके कहता हूँ कि तुम भी सिद्ध हो। क्या स्थापित करते हो? मैं तुम्हारे आत्मा में भी सिद्ध पद का स्थापन करता हूँ, मैं भी सिद्ध हूँ, तुम भी सिद्ध हो। अब सुनो सिद्ध पद की, अब सिद्ध स्वरूप की बात सुनो। कहने का मतलब क्या था कि कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, बदल दिया, संसार गति को छूट करके, संसार के जन्म मरण को छोड़ करके, जन्म मरण रहित दशा को प्राप्त किए, उसको मोक्ष गति कहते हैं, पंचम गति कहते हैं, उसकी बात मैं करूंगा। वो छामे समय पाहुड़ मीनम, वो बात मैं करूंगा। समय सार में मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो पंचम गति को प्राप्त हो, संसार की चार गति को छोड़ करके सिद्धालय में गए, उसकी बात मैं करना चाहता हूं। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, पहचान करके उसका विश्वास करो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, इसका अनुभव करो और उसमें लीन हो जाओ, उसमें जमे रहो, तो बीड़ा पार हो जाएगा, मैंने तुम्हारा छुटकारा जन्म मरण से हो जाएगा। संसार में सभी प्राणियों को जन्म के काल में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, और मृत्यु के काल में भी बहुत दुख होता है, प्राण छूटता है, बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख ये दो प्रसंग में है। उस जन्म और मरण के बीच में जो आयुष्य का काल है, जीवन का काल है, उसमें भी तरह तरह का दुख आता है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी रोग होता है तो पीड़ा का दुख होता है, कभी टेंशन होता है तो इससे ज्यादा दुख होता है, तो आधि व्याधि उपाधि संसार में बहुत है। इस सभी प्रकार का दुख से छूट जाना और बेहद सुख का अनुभव होना, बेहद सुख की प्राप्ति होना, इसी को कहते हैं कि बेड़ा पार हुआ। बेड़ा पार हुआ माने क्या? इसके संसार के सभी प्रकार के दुख का नाश होना और परिपूर्ण सुख और परमानंद की और परम शांति की प्राप्ति होना, उसको कहते हैं बेड़ा पार। ऐसी एक विद्या है, ऐसी एक चमत्कारिक आध्यात्मिक विद्या है जो हिंदुस्तान के सिवा कहीं और जगह नहीं है। हम तो देश विदेश में जाके आए, कहीं नहीं है, न इंग्लैंड में है, न अमेरिका में है, न यूरोप में है, न रशिया में है, न ऑस्ट्रेलिया में है, न कहीं और जगह है, कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में भी मूल चीज, विद्या का मूल मंत्र जैन के अलावा और जगह नहीं है। और जैन में भी संप्रदाय में ये चीज नहीं रही, विकृति आ गई। जो कुछ है वो कुछ ज्ञानियों के पास है। जो बोल तीर्थंकर की दी हुई विद्या है अध्यात्म विद्या, कहने का मतलब वो है कि ये मौका है हमारे पास, इस विद्या की उपलब्धि होवे, प्राप्ति होवे, ऐसा मौका है। अगर हमें सभी प्रकार से दुख से छूटना हो तो ये बात पहले होनी चाहिए कि हमको बिल्कुल दुखी होना ही नहीं है, हमेश के लिए हमें सुखी होना है, परमानेंट सुख चाहिए, अल्पकाल के लिए नहीं चाहिए और पूरा पूरा चाहिए। ऐसा जैसा जिसका अभिप्राय हो, ऐसी जिसकी अभिलाषा हो, उनके लिए ये चीज है। ऐसा महिमावंत, ऐसा वैल्यूएबल, महिला महिमावंत मैंने क्या, इसकी कीमती चीज हमारी आत्मा है कि जिसमें अनंत सुख भरा है, अनंत ज्ञान भरा है। हमारे जिनेंद्र परमात्मा अनंत परमानंद से विराजमान है। कितना उसको आनंद है, अनंत परमानंद है। और वो कहते हैं कि तुम हमारे जैसे बन सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। बात तो कितनी है, तुम्हारी चाहत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं है यहाँ, बाकी तो सबसे कोई बढ़िया से बढ़िया चार्ज करते हैं तो कंसल्टेशन करने वाले कंसल्टेंट लोग करते हैं। देखिए आप, सबसे बड़ा चार्ज किसका होता है, ये इकोनॉमिस्ट होते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, नानी पालकी वाला है, ऐसे बड़े बड़े, उसका मिनटों का चार्ज लगता है, हजारों रुपये लेते हैं मिनटों का। जबकि हमारे श्री गुरु होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, कंसल्टेशन पूरा कराते हैं, कितना पूरा सुख होने के लिए, सभी दुख को खत्म करने के लिए, कोई चार्ज नहीं। ऐसे निष्कारण करुणाशील वो होते हैं, जगत के दुखी प्राणियों को देख करके उनको करुणा आती है और फ्री ऑफ चार्ज वो अपना उपदेश को बांटते हैं। इसी सिद्धांत को लेकर के हमारा पीरियोडिकल चलता है, जो स्वानुभूति प्रकाश चलता है। कई लोग कहते हैं आप फ्री क्यों देते हैं, कुछ तो चार्ज रखिए, कुछ तो चार्ज रखिए। हमारे सिद्धांत में वो बात नहीं है, चार्ज लेने की बात हमारे सिद्धांत में नहीं है। ज्ञान का पैसा कोई लेता है वो ज्ञान नहीं होता, अगर कोई ज्ञान का पैसा लेता है तो वो ज्ञान होता ही नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं होता है। ये तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, वो तो दुकानदारी हो गई, ये दुकानदारी का विषय नहीं है। इसी सिद्धांत को लेकर के हमने वो पॉलिसी बनाई ट्रस्ट की कि ज्ञान ज्ञान तो फ्री फ्री होगा। पुस्तक की कीमत रखते हैं अपन, लेकिन 90% फ्री जाता है अपना, वितराग ट्रस्ट में अभी तक 2 लाख किताबें छप गई, कितनी करीब करीब फ्री गई है, 2 लाख किताबों के रुपये तो ज्यादा होते हैं, करीब करीब फ्री गई है, अभी भी फ्री जाती है, बहुत जाती है, क्योंकि चीज की मूल्य, उसका मूल्य क्या किया जाए, तो सभी प्रकार के दुख से छुड़ाएं और अनंत सुख की प्राप्ति कराएं, बेहद सुख की प्राप्ति, उसका मूल्य क्या हो सकता है, इसका कोई टर्म नहीं है, मूल्य करने का कोई टर्म नहीं है। ये तो भौतिक पदार्थ में लेने देने की टर्मिनोलॉजी है, ये तो अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। संसार में टेंशन की कौन सी दवाई है बताओ, है कोई? और टेंशन फ्री कौन सा मनुष्य है वो बताओ, एक भी आदमी बता दो जो टेंशन फ्री हो। इतनी बड़ी समस्या है कि पूरे अरबों मनुष्य टेंशन में है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये इलाज इधर है, इसकी कीमत कौन कितने की जाए, और वो इलाज भी फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, लेकिन प्रयोग खुद को करना पड़ता है। ऐसे चार्ज नहीं लेते लेकिन सब कुछ ले लेते हैं, क्या अपनत्व छोड़ो, शरीर मेरा नहीं, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, संपत्ति मेरी नहीं, कोई चीज मेरी नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मेरापन छोड़ना ये सबसे बड़ा चार्ज है, सुखी होने के लिए। जितना अपनत्व किया उतना टेंशन हुआ, अपनत्व छोड़ा उतना टेंशन गया, जो मकान में हम रहते हैं उसको मेंटेन करते हैं तो उसका टेंशन आता है। वो मकान बेच दिया फिर इसका टेंशन आता है क्या, क्योंकि पराया हो गया, अपना भी माना था और अपना ही होता तो अपने साथ ले जाता, लेकिन कोई लेके जाता नहीं। हमारे मुमुक्ष हुए अरबपति है, कितना है, अरबों रुपये है, करोड़ों नहीं, अरबों है, 2-4 अरब नहीं है, ज्यादा है। उसके पिताजी मर गए, कौन मर गए, अरबपति के बाप मर गए कौन मर गए, अरबपति के बाप मर गए, क्या लेके गए, गाड़ियां, मकान, पैसे, शेयर सर्टिफिकेट के गोडाउन थे, अलमारी नहीं थे, गोडाउन रखने पड़ते थे, कमरे के कमरे भरने पड़ते थे, अरबों होते हैं क्यों, क्या ले गया साथ में, ममत्व ले गया कि ये सब मेरा था, ये सब मैं अरबपति का बाप, अरबपति नहीं, अरबपति का बाप में। तीन इंच गति में जाना पड़ता है, क्या होता है, पशु होना पड़ता है, बहुत ममत्व होता है तो इसके ही घर में चूहा होता है या छिपकली होता है या मक्खी होता है, चींटियां होता है, इसके ही घर में आता है, बिल्ली होकर के आता है, बिल्ली आहिस्ते से प्रवेश करता है, मालूम नहीं पड़ती कैसे घर में आ गई, खिड़की में से आ जाती है। सब बन के आना, क्रोधी होता है तो सब बन के आ जाता है वहां। और बहुत दीनता होती है मान के तो कुत्ता बन के आता है, पिल्लू बन के आता है, और उसको फिर कोई बाप के रूप में स्वीकार नहीं करता। उनको कोई स्वीकार करता नहीं है, वो देखता रहता है अरे ये मेरा लड़का है। अगर जाति स्मरण होता है तो पूर्वों की स्मरण आती है तो देख लेता है, लेकिन मैं मानते नहीं, मेरे को बाप मानते नहीं, मैं मेरा लड़का है फिर बाप नहीं मानते, कहाँ से मानेगा। तुम धोखा में था, तुम खुद ही धोखा में था, तुम आत्मा है वो भी आत्मा है, सब परिभ्रमण करते हो, अपने अपने कर्म को प्रारब्ध को भोगते हैं। अगर सही समझ आया और अध्यात्म विद्या को प्राप्त की तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे हमारे गुरु लोग और हमारे जिनेन्द्र परमात्मा सबसे बड़े दयालु थे, करुणा वाले थे, संसार के सभी प्राणी पर करुणा करके सुखी होने का रास्ता बता दिया, कोई विचार लिए बिना। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो अनंत करुणा वाले थे, अनंत दयालु थे, दया के करुणा के सागर थे। इस तरह से तीन पंक्ति में, छोटे से शब्द में, छोटी से पंक्ति में बड़ी से बड़ी बात बताई है, इसलिए उसको कहते हैं मंत्र। कि जानवर से भगवान हो जाए, ये बात कही है। यहाँ तक टाइम हो गया है, स्वरूप ने ओळखू, अने प्रतीति अनुभव अने रमणता करवानो श्री गुरु नो मंत्र छे। एक गुप्त चमत्कार छे, જેનાથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો પ્રાણી ચૌદ લોકનો નાશ થઈ જાય છે, સર્વોત્કૃષ્ટ રહસ્યભૂત આ વિષય જગતમાં રહ્યો છે, તેની સૌ પ્રથમ અપૂર્વ જિજ્ઞાસા થવી ઘટે છે।
द्रव्य सकल में